यौम इदिल्ला तनफाउ शफातु, वो दिन वो होगा जिस दिन सिफारिश काम नहीं देगी, कि जब इंसान अब कांप रहा है ना और कहता है कि हाय हाय कोई आ जाए, हाय अब कौन किसको देखूं, कौन किसको कहूं, किसको पकड़ूं, तो शिफात काम नहीं देगी, इल्ला मन अदीना लहुर रहमान, सिवाय इसके जिसको इज़न दे रहमान, वह रदिया लहू कौला, और रहमान पसंद करे उसके लिए बात को। आप देख ले दोबारा रहमान का लफ्ज आया, वो तो रहमान है, रहमान वो होता है एक्सट्रीमली ज्यादा, एक्सट्रीम रहम करने वाला, इसकी रहमत की इंतहा ना हो, वो किसी को इज़न दे दे तो ही उस दिन वो सिफारिश कर सकेगा और वो पसंद कर ले उसके लिए बात करना। पहले कह दिया शिफात किसी को नफा नहीं देगी, याद रखिए काफरों के यहाँ शिफात का एक और कॉन्सेप्ट था, वो कहते थे कयामत अव्वल तो आनी ही नहीं है, और अगर आएगी भी तो हमारे पास बड़ा अच्छा इंतजाम है। सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वो कहते हैं हम इन बुतों की पूजा इसलिए सिर्फ करते हैं कि ये हमें अल्लाह ताला के करीब कर दें और वहां पे हमारी सिफारिश कर दें। तो अल्लाह ताला ने बता दिया सिफारिश ऐसे नहीं होगी, सिफारिश उसके लिए, उसको सिफारिश करने का इल्ला मन अदीना, जिसको इजाजत दे, यानी आप नहीं सोच सकते कि मेरे लिए फलां सिफारिश कर दे, जी आप मेरे लिए सिफारिश कर देना। अब आप दुनिया में किसी को कह रहे हैं जी आप मेरे लिए सिफारिश कर दें, आपको क्या पता है इसको अल्लाह का इज़न मिले कि नहीं मिले। अल्लाह ताला जिसको इजाजत देगा वो ही सिफारिश कर सकेगा, खुद नहीं कोई आगे बढ़ के। जैसे दुनिया में तो माँ बाप अपने बच्चों की सिफारिश करते हैं ना, झूठी चाहे सच्ची, अपने बच्चों को अच्छा बना बना के पेश करते हैं, कहीं नौकरी दिलानी है, कहीं रिश्ता डालना है, कहते हैं मुझे हमारा बच्चा तो इससे अच्छा कोई बच्चा ही नहीं, हाँ इससे कोई लायक ही नहीं, इससे ज्यादा शरीफ ही कोई नहीं। तो कितनी जल्दी खड़े हो जाते हैं अपने बच्चों की सिफारिशें करने, लेकिन वहां पे कोई माँ बाप नहीं खड़े हो जाएंगे औलादों की सिफारिश करने के लिए, मगर जिसको अल्लाह ताला इजाजत देगा। अब यहाँ पे तो इजाजत की जरूरत नहीं होती, खुद नेचुरली हम करते हैं ना कि नहीं जी हमारा बच्चा है, मैं नहीं सिफारिश करूंगा, मैं नहीं कहूंगी तो और कौन कहेगा, वहां पे कोई नहीं खड़ा होगा, किसी की मिजाल नहीं होगी कि वो किसी के लिए सिफारिश करे। और दूसरा वरदिया लहू कौला, और पसंद करे उसके लिए बात को, यानी जिसकी बात से भी अल्लाह राजी हो, जिसकी बात से अल्लाह राजी हो जाए उसको यह हक मिलेगा, या जिसके लिए सिफारिश करी जा रही है उसकी किसी बात से अल्लाह राजी हो उसके लिए सिफारिश का इज़न देगा। और मुफसिरीन कहते हैं अल्लाह की पसंद का कलमा वो है कि यानी उसका आखिरी कलाम दुनिया से जाते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके लिए अल्लाह ताला इजाजत देगा, क्योंकि इस कलमे से अल्लाह ताला राजी होता है। और इसी तरह और अल्लाह ताला किस बात से राजी, किस कौल से अल्लाह राजी होता है, कुरान पाक के पढ़ने से, नमाज से, कलमा तैयबा से, और जिक्र अजकार से, इन चीजों से अल्लाह ताला खुश होता है। तो जो ये काम करेगा उन उनके लिए अल्लाह ताला इजाजत देगा कि उनकी सिफारिश कर दी जाए। और सिफारिश के लिए देखिए यहाँ पर तो इतनी बात कही गई, दो बातें कही गई, लेकिन वैसे सिफारिश के लिए तीन शरायत है। एक तो ये मन अदीना लहु रहमान, ये कोई खुद खड़ा होके नहीं कर सकता, मैं करूंगा जी फलां की सिफारिश, मैं हूं इसका बाप, मैं हूं इसका दादा, ये मेरा पसंदीदा पोता, मेरा फेवरेट, ये मेरा शौहर, या ये मेरी बीवी, या ये मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को कैसे ऐसे देख सकती हूँ, मैं तो सिफारिश करूंगी करूंगी, मुझे नहीं कोई रोक सकता, ऐसे नहीं कोई कर सकेगा। जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा वो करेगा। फिर रदिया नंबर टू, रदिया लहु कौला, इसकी बात को अल्लाह ने पसंद किया हो, जिसकी बात से अल्लाह ताला राजी हुआ हो, ठीक है, उसको उसके लिए होगा। और तीसरी शर्त सूरह अंबिया आयत 23 है, उसके अंदर है कि जिसकी सिफारिश की जा रही है वो भी अल्लाह ताला ने अप्रूव की हो कि इसकी सिफारिश की जाए तो वो उसकी सिफारिश की जा सकेगी। ठीक है, वला यशफाउना इल्ला लिमन इर्तदा, सूरह अंबिया 28 में है, 28 23 नहीं है। वो उसी की सिफारिश करते हैं जिससे अल्लाह राजी हो। इसका मतलब ये नहीं है वो उठ के किसी चोर चक्के काफिर मुशरिक इसकी सिफारिश करना शुरू जाए, क्योंकि मैं खुद बहुत नेक हूं, मुझे मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसकी सिफारिश करूं, मुझे ये बड़ा पसंद है। नहीं, जिसके लिए अल्लाह पसंद करे, इस बंदे को अल्लाह ताला चाहता है कि इसको बख्श दे। तो असल में शिफात ऐसे नहीं है कि बस मर्जियां चल रही हैं, मेरी मर्जी है तो मैं सिफारिश करना शुरू कर दूं, या जिसके लिए मेरी मर्जी। अगर अल्लाह ने इज्जत भी दे दिया ना किसी को, तो ऐसे नहीं होगा कि अपनी मर्जी से, अब मेरा दिल करता है फलाने को, ये बन मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, ये मेरी फलां थी, ये मेरी कुलीग थी, इसके लिए मैं सिफारिश करूं। नहीं, बल्कि जिसके लिए अल्लाह ताला जिससे राजी होगा उसी के लिए करवाएगा सिफारिश। यानी वो भी चूज अल्लाह करेगा जिसने करनी है, जिसके लिए करनी है वो भी अल्लाह ने चूज करना है, और जिसकी बात से राजी होगा उसके लिए सिफारिश होगी। और सिफारिश या शिफात दो तरह की होगी, एक तो शिफात उज़्मा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे कि या अल्लाह लोगों का हिसाब किताब शुरू हो जाए, क्योंकि लोग इतने परेशान होंगे कयामत के दिन, इतनी दहशत होगी, इतनी मुश्किल में पड़े होंगे, इंतजार कर करके खड़े में इंतजार कर रहे हैं और इंतजार खत्म नहीं हो रहा, ना हिसाब किताब शुरू हो रहा है। तब लोग जो आपको वो लंबी हदीस पता है कि लोग आदम अलैहि सलाम के पास जाएंगे, नूह अलैहि सलाम के पास जाएंगे, इब्राहिम अलैहि सलाम के पास, ईसा मूसा अलैहि सलाम, फिर ईसा अलैहि सलाम, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शिफात करेंगे कि अल्लाह हिसाब किताब शुरू हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता फरमाया जाएगा, जिस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात करेंगे, और फिर आपकी शिफात कबूल की जाएगी और लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा। और दूसरी शिफात ऐसे है कि जैसे कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जैसे हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी की एक दुआ कबूल होती है, बस हर नबी ने वो दुआ जल्दी मांग ली यानी दुनिया में, और मैंने इस दुआ को कयामत के लिए अपनी उम्मत की शिफात के लिए रखा है कि मेरी उम्मत में से हर उस शख्स के ये हासिल होगी जो इस हाल में मरा कि उसने अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं किया। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी शिफात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो कोई जहन्नुम में ही नहीं जाएगा, कोई तो जहन्नुम में जल जल के कोयला हो चुके होंगे। या जैसे वो आती है मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज़ तो दोजख में होंगे, तो वो लोग जो दोजख के मुस्तहिक है वो दोजख में जलते रहेंगे, ना मरेंगे ना जियेंगे, पता नहीं कितना अरसा गुजरेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको उनके गुनाहों की वजह से दोजख में डाला जाएगा, फिर उनको वो दोजख में जलते रहेंगे, फिर अल्लाह ताला उन पर एक ऐसी मौत तारी कर देगा यानी उनको बेहोश कर दिया जाएगा या ऐसी मौत तारी हो जाएगी हत्ता के वो कोयला बन जाएंगे, तब शिफात की इजाजत दी जाएगी, फिर इन लोगों को ग्रो दर ग्रो निकाला जाएगा। ये वो लोग हैं इन्होंने शिर्क नहीं किया था लेकिन गुनाह किए थे, फिर उनको दरिया में डाल के फिर इनको साफ किया जाएगा, अहले जन्नत मतलब इनसे कहा जाएगा कि अहले जन्नत इन पर पानी डालो, फिर इस तरह जैसे कीचड़ में से बीज निकलता है इस तरह वो उगेंगे साफ सुथरे होके। ये तो कोयला बन चुके होंगे ना, एक दुनिया की जरा सी आग उंगली पे ही लग जाए तो इंसान तड़प के रह जाता है, कहाँ के पूरा जिस्म जहन्नुम की आग में जल रहा, और लोग इतने आराम से कह देते कोई बात नहीं है कि फिर थोड़े दिन रह लेंगे, तो अस्तग़फिरुल्लाह या अल्लाह जहन्नुम की तो हमेशा कल भी ना दिखाना या रब, बिजली किसी तेजी से उसके ऊपर से गुजार देना। तो इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौजम अल औसत की ये रिवायत है कि हजरत अब्दुल्ला बिन बसर रदी अल्लाहु अन्हु वो बयान करते हैं कि हम नबी अलैहि सल्लातु वसल्लम के साथ सेहन में बैठे हुए थे, अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेहन उनके सेहन में बैठे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आपका चेहरा चमक रहा था। तो हमने पूछा, या रसूल अल्लाह आप किस वजह से इतने खुश हैं? तो आपने फरमाया, अभी अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे बशारत दी है कि अल्लाह अज्जा वजल ने मुझे शिफात अता फरमाई। हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या वो सिर्फ बनू हाशिम के लिए है? आपने फरमाया नहीं। हमने अर्ज किया, क्या वो सिर्फ कुरैश के लिए? आपने फरमाया नहीं। हमने अर्ज किया, क्या वो आपकी उम्मत के लिए? आपने फरमाया हाँ, मेरी उम्मत के गुनाहगारों के लिए, जो गुनाहों से बोझल होंगे उनके लिए मेरी सिफारिश होगी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, मुस्नद अहमद की रिवायत है, कि कयामत के दिन सबसे पहले अम्बिया शिफात करेंगे, फिर शुहादा शिफात करेंगे, फिर मुअज्जिनीन शिफात करेंगे। नहीं, शिफात का हक अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को देगा। और फिर ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत वाले जो है ना, जब उन लोगों को नहीं पाएंगे जन्नत में जिनको वो दुनिया में पहचानते थे, तो फिर वो अंबिया अलैहिस्सलाम के पास जाके उनका जिक्र करेंगे, वो उनकी सिफारिश करेंगे और उनकी शिफात कबूल की जाएगी और उनको तुलाका कहा जाएगा, यानी आजाद करदा। अब वो आबे हयात में उनको डाला जाएगा तो फिर वो उगेंगे और फिर सही होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शिफात करेंगे और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम भी शिफात करेंगे, मगर कोई भी शिर्क वाले के लिए शिफात नहीं करेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोगों को उनके गुनाहों पर अजाब दिया जाएगा। ये ना कोई समझे कि वो मुसलमान है तो उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिफात कर देनी हमारी, बस हमने पार ही हो जाना है, हमें तो कुछ भी नहीं कभी होना, हम जितने मर्जी गुनाह करते रहे, हम तो उम्मती हैं और बस उम्मती होना ही हमारे लिए काफी है, ये हमारे लिए इनाफ टाइटल है। आपने क्या कारनामा किया? अपना कारनामा बताए ना। आपने खुद दरख्वास्त दी थी कि मैं उनकी उम्मत में से हो जाऊं, आपके ऊपर तो बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप उनके उम्मत ही हैं। तो अब तो कोई भी और नबी नहीं आएगा उनके बाद। अब जो नबी काम किया करते थे अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का, आगे वो आपके जिम्मे है, तो आपकी तो ड्यूटी ज्यादा है, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, लिहाजा आपका काम भी उस मुताबिक का होना चाहिए। उम्मत ही होने का हक तो कोई अदा नहीं किया, सिर्फ टाइटल लगा के घूम रहे, ये कैसे बात हो गई? अब एक बंदा कहे जी मैं तो सदर मुमलिकत हूँ, मैं तो सदर हूँ, मैं तो सदर हूँ। काम वो कोई सदर वाला करता नहीं, ना वो सदर के ऑफिस में बैठता है, ना वो कोई फैसले करता है, ना वो कोई अपनी कौम की खैरखाई करता है, कुछ भी काम नहीं करता। बस ये, बस मैं जी सदर हूँ, मैं सदर हूँ, बस झंडे वाली गाड़ी में घूमता रहता, उसको सदर कहेंगे क्या? तो ये तो उल्टा हमारे खिलाफ ना उस दिन एक हुज्जत बन जाए, इसलिए कि शिफात ही नहीं होगी, हक में ही नहीं होगी, सिर्फ खिलाफ भी होगी। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन फरमाएंगे, सूरह फुरकान में आता है कि उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ भी बात कहेंगे कि अल्लाह मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ दिया था, वो ये फरमाएंगे उस दिन। सिर्फ हक में नहीं होगी, खिलाफ भी होगी। कुरान भी, यहाँ तो हक में शिफात करेगा तो कुरान को भी इजाजत दी जाएगी कि ये भी सिफारिश करे, ये भी उठ के खड़ा होगा, ये भी कहेगा या अल्लाह ये बंदा मुझे रातों को पढ़ा करता था, मैं इसको जगाता था रात को क्योंकि ये मेरे साथ मसरूफ रहता था, अल्लाह तू मेरी सिफारिश इससे हक में कबूल फरमा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान जो है ना, कुरान हुज्जतुल्लाह और अलैक, कुरान हुज्जत बनेगा तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ, यानी खिलाफ भी हुज्जत बन सकता है कि कुरान कहेगा कि अल्लाह इसने मुझे पसे पुश्त डाल दिया था, ये तो कभी उसने मुझे देखा ही नहीं। अब हम देख ले हमारे घरों में कुरान कितनी दफा निकाला जाता है, कितनी दफा पढ़ा जाता है, कितनी दफा उसकी जियारत होती है, हर दिन होता है, हफ्ते में एक दफा होता है, महीने में एक दफा होता है, या सिर्फ रमजान के रमजान होता है, खुद सोच ले। तो ये भी सिफारशी बन सकता है, और जिसने इसको सिफारिश ही बनाया तो मुख्तलिफ लोग हैं जो शिफात करेंगे, मुख्तलिफ लोग हैं, कुरान है, अंबिया है, सुलहा है, सालेहीन है, शुहदा है, मोजिनीन है, और रोजा भी क़यामत के दिन शिफात करेगा कि मैंने इसको भूखा प्यासा रखा, अल्लाह मेरी शिफात इसके हक में कबूल कर ले। और फिर मोमिन और भी मोमिन है, जैसे कि एक जगह पे आता है कि कयामत के दिन बच्चों को भी शिफात के लिए इजाजत दी जाएगी, वो बच्चे जो कि यानी नाबालिग थे या जो माँ के पेट में ही खत्म हो गए बच्चे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्ने माजा की रिवायत है कि ना तमाम बच्चा, यानी वो वाला बच्चा लेकिन जिसकी रूह पड़ गई हो, ऐसे नहीं है कि जो कच्चा बच्चा, वो नहीं, जिसकी रूह पड़ गई हो, बच्चा बन गया और रूह आ गई है उसमें, वो भी अगर मतलब मर गया, पैदा होते वक्त मर गया या फिर पेट में ही मर गया, वो भी अपने रब से झगड़ा करेगा कयामत के दिन, कहेगा मेरे माँ बाप को या अल्लाह दोजख में ना दाखिल किया जाए, उनको जब दोजख में होंगे भी अगर, तो वो झगड़ेगा कि मेरे माँ बाप को जन्नत में दाखिल कर दे, वो अपने माँ बाप को घसीटता हुआ लेकर आएगा और उनको जन्नत में दाखिल कराएगा, अल्लाह ताला उसको इजाजत देगा। फिर वो बच्चे जो फौत हो गए किसी के, छोटे बच्चे फौत हुए, कयामत के दिन उन बच्चों से कहा जाए कि जन्नत में दाखिल हो जाओ, वो कहेंगे हमारे रब हम नहीं जाएंगे जब तक हमारे माँ बाप ना आ जाए। सुभान अल्लाह, तो अल्लाह ताला फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें कहा है, तुम इनकार करते हो, तुम जाओ जन्नत के अंदर, वो कहेंगे अल्लाह हमने नहीं जाना हमारे माँ बाप जब तक ना आ जाए, तो अल्लाह ताला फरमाएगा तुम भी जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप भी। ये भी मुस्नद अहमद की रिवायत है। तो सुभान अल्लाह, इतने लोगों को शिफात का हक दिया जाएगा, और फिर देखिए ना कहा जाएगा जिसके, हदीस में आता है जिसके दो कमसिन बच्चे जो हैं वो फौत हो गए, तो अल्लाह ताला उनको उसके लिए जन्नत में दाखिल कराने का सबब बनाएगा, इनकी वजह से जन्नत में दाखिल कर देगा किसी को। तो हज़रत आयशा ने फरमाया या रसूलल्लाह जिसके एक बच्चा फौत हुआ, तो आपने फरमाया जिसका एक फौत हुआ तो वो भी उसके लिए बनेगा इसी तरह। तो हज़रत आयशा ने फरमाया और जिसका आपकी उम्मत में से कोई कमसिन बच्चा भी पेश रो ना हो, उसको लेके ना जाने वाला, उनकी तो कोई औलाद ही नहीं थी ना, तो आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत का पेश रो हूँ, ठीक है, मेरे फिराक से बढ़ के इनके लिए कौन सी मुसीबत है, अगर मैं नहीं हूंगा तो और कौन, उनके लिए तो मैं हूंगा। तो यानी ये आप ये देखिए कि कोई किसी का बच्चा नहीं भी हो तो वो भी ना गम करे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला उस दिन सिफारशी बनाएगा। फिर देखिए ये भी हदीस में इब्ने माजा की आता है कि जिसने कुरान मजीद पढ़ा और हिफ्ज किया, अल्लाह ताला इसको जन्नत में दाखिल करेगा और उसको अपने घर के ऐसे 10 अफराद के लिए शिफात करने वाला बना देगा जो दोजख के मुस्तहिक हो चुके होंगे, तो अल्लाह ताला उनको भी इजाजत देगा। सुभान अल्लाह, इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से वो लोग भी जो दोजख में हैं वो भी आखिर में निकाल लिए जाएंगे, जिनके दिल के अंदर ईमान होगा, राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। और इसी तरह हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतलिब मुस्लिम की हदीस है कि वो फरमाते हैं कि मैंने कहा या रसूलुल्लाह अबू तालिब आपका दिफा करते थे, आपकी मदद करते थे, आपके लिए लोगों से दुश्मनी करते थे, तो आपने उनको कोई नफा पहुंचाया, यानी आपकी रिसालत से उनको भी कोई फायदा होगा, तो आपने फरमाया वो टखनों तक आग में होंगे और अगर मैं ना होता तो वो दोजख के सबसे निचले तबके में होते, यानी वो एक काफिर होके भी लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात की वजह से निकल तो नहीं सकेंगे वहां से, जाहिर है कोई भी मुशरिक निकल नहीं सकता, इसीलिए इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि हमारी मौत आए तो ईमान पे मौत आए, बस यही दुआ करते रहा करें कि अल्लाह ईमान पे हमें दुनिया से उठाना या अल्लाह, क्योंकि ईमान के बगैर नहीं है कुछ, फिर तो कोई खलासी है ही नहीं, कोई उम्मीद है ही नहीं, जो ईमान पे दुनिया से ना गया वो फिर उम्मीद ही उसकी खत्म है, ठीक है, जहाँ दूसरे जहां तक है ठीक है, बहुत बहुत अल्लाह ताला माफ करे, अल्लाह तू एक झलक भी ना जहन्नम की दिखाना, कोई अरसा रहेंगे वो जहन्नम में लेकिन एक हल्की सी उम्मीद तो है ना कि कभी तो निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे, वर दूसरे तो कभी भी नहीं निकले, खालिदीन फीहा अबदा 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 है सूरह बैयना में फरमाया ना, अबदा वो उसके अंदर रहेंगे, नहीं सूरह बैयना में नहीं है कहीं और है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हजरत अनस ने देखे कैसे वो भी सवाल करते थे ना, कहते मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कयामत के दिन आप मेरे लिए शिफात करेंगे, आपने फरमाया मैं करने वाला हूँ, तो मैंने अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं आपको कहाँ पे वहां पे ढूंढूंगा। सुभान अल्लाह, देखिए सहाबा के सवाल भी कितने प्यारे, इतनी मखलूक है, मैं कहते मुझे किधर पता, आप यहाँ पे हज पे किसी को ढूंढने लगे, आप ढूंढ सकते हैं कोई, हालांकि लाखों का मजमा होता है बस, और वहां पे तो पता नहीं अरबों खरबों कितने लोग आदम अलैहि सलाम से लेके आखिर तक इतनी दुनिया खड़ी, मैं आपको किधर ढूंढूंगा। आपने फरमाया कि तुम मुझे सिरात पे तलाश करना, अल्लाह हू अकबर, सिरात पे तलाश करना, क्योंकि जो जब अंबिया दूसरी तरफ चले जाएंगे तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे ना कि अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह जब हर एक कहेगा रब्बी सल्लिम जब अल्लाह मुझे बचा ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए दुआ करें। तो उन्होंने कहते हैं मैंने अर्ज किया अगर मैं सिरात पे आपसे मुलाकात ना कर सकूं, आपने फरमाया तो मुझे मीजान के पास फिर तलाश करना। मैंने अर्ज किया अगर मैं मीजान के पास भी आपसे मुलाकात ना कर सकूं, फरमाया फिर तो मुझे हौज के पास तलब करना, क्योंकि मैं इन तीन मकाम में से कहीं उससे तजावज नहीं करूंगा, यानी यहीं पे कहीं होगा इन तीनों जगहों पे। आपको पता है नबी अलैहि सलातो वसलाम करोड़ों दरूद अरसल, करोड़ों दुरूद अलैहिस्सलाम मेरे नबी पे, के फरमाया मैं अपने हौज पे अपनी उम्मत का इंतजार कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, वहां भी उनको उम्मत की फिक्र नहीं गई, वो तो आराम से जाके जन्नत में बैठ जाए, उनको क्या अपनी फैमिली को लेकर, उनकी फैमिली तो वैसे ही जन्नत ही है, जन्नती जन्नतों की बशारतें जिनको मिल गई, जिनको जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सलाम मिल गए, जिनको बशारत मिल गई है जन्नत के सरदार होंगे, नौजवानों के सरदार होंगे, बीबी फातिमा को फरमा दिया जन्नत में मेरे साथ मिलोगी, सबसे पहले मेरे से मिलोगी, अल्लाह अकबर। तो उनको क्या परवाह है कोई आएंगे 1400 साल बाद, लेकिन उनकी कितनी परवाह की कि वहां पे तुम्हारा इंतजार करना। तो याद रखना फिर आपने अपने नबी को ढूंढना हुआ तो इन तीन जगहों में से ढूंढ लेना, यहां पे मिलेंगे। यालमु मा बैना एदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो उनके सामने उनके आगे और जो उनके पीछे, वला युहीतुना बिही इल्मा, और नहीं वो अहाता कर सकते उसका इल्म के एतबार से, यानी आगे पीछे मतलब क्या, जो दुनिया में किया और जो आखरत के अहवाल है वो सब उसको मालूम है जो दुनिया में वो करते रहे, और फिर जो हो चुका जो होने वाला वो भी सब मालूम है, और आगे जो दुनिया के आमाल थे वो भी मालूम है, और जो आखरत में सवाब या सजा मिलने वाली है वो भी मालूम है, कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है वो भी उसको मालूम है, कौन उस दिन क्या बोलेगा वो भी उसको मालूम है, कोई अहाता ही नहीं कर सकता उसके इल्म का, उसका इल्म इतना वसी है। यहाँ पे बात ये क्यों आई, इसलिए कि सिफारिश ही शिफात की पहले बात आ रही थी, तो शिफा तो वो ही करता है जब वो कोई कहता है ना, देखिए हम जब किसी की सिफारिश करने जाते हैं तो हम कहते हैं मैं इसको जानती हूँ, मेरी गारंटी है इसके बारे में, मैं गारंटी देती हूँ ना, आप इसको छोड़ दें, आपने ऐसे इसको पकड़ लिया होगा, मेरे ख्याल आपको कोई गलत फहमी होगी, मुझे पता है ना ये कैसा है, ठीक है आप ये कहते हैं ना, फिर वो पुलिस भी सोचती है कि भाई ये इतना मोतबर इंसान इसकी सिफारिश कर रहा, तो वाकई पता नहीं है कोई शरीफ ही आदमी होगा, हमसे ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन अल्लाह ताला के पास ऐसा नहीं है कि भाई हमें पता है तो हम सिफारिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है अल्लाह ये कैसा है, कि इसलिए कि उसका तो इल्म हर चीज को अहाता किए हुए है, हम ये नहीं कह सकते अल्लाह तुझे नहीं पता, सोचा शायद ऐसे ही गलती से पकड़ा गया, मुझे जो पता है ना मैं दुनिया में इसको देखती थी ना, मेरे साथ ही रहता था, ये मेरे घर में रहता था, ये मेरे घर में रहती थी, ये मेरी हमसाई थी, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे पता है ना ज्यादा, ये नहीं ना कह सकते वहां, क्योंकि अल्लाह के इल्म में तो कोई इजाफा नहीं कर सकता, कोई कह नहीं सकता मुझे पता है ना अल्लाह ये कैसा था उसके। हाँ तो सिफारिश फिर उसी की हो सकती है जिसको वो इज्जत दे दे, इसलिए कि सारा इल्म तो उसके पास ही है, उससे ज्यादा किसको पता होगा, हम तो किसी को जानते होंगे तो उसके जाहिर को जान सकते होंगे, या उसके साथ 50 साल से रह रहे होंगे तो शायद कुछ थोड़ा बहुत उसको उसकी आदत उसके अतवार को जानते होंगे, अल्लाह ताला तो उसको तब से जानता है जब वो माँ के पेट में था और उससे भी पहले जब और वो था, अल्लाह ताला तो उसकी एक आंख के झपकने को भी जानता है और दिल के हर ख्याल को भी जानता है, वो तो दिलों की बातों को जानने वाला है, तो उसके आगे कौन खड़ा होकर ये कह सकता है कि मुझे पता है ना इसका, तो ये नहीं कोई कह सकता। अगला पिछला सब जानने वाला है और कोई अहाता कर ही नहीं सकता उसके इल्म का। तो यो सोचेंगे किस हस्ती के बारे में बात कर रहे हो, किसके आगे उस दिन खड़े होना है, कोई कह नहीं सकेगा नहीं अल्लाह आपको क्या पता, दिल से तो मैं अच्छी थी, नीयत तो मेरी अच्छी थी। लोग यहाँ पे तो वो करते हैं ना कि नहीं, अगर देखिए अगर सामने के अमल ऐसे हैं ना, दिल की बड़ी अच्छी है, या कहते हैं ना मेरा दिल वैसे बड़ा साफ है। ये आप यहाँ पे तो कह सकते हैं किसी को मनाने के लिए, किसी को कहने के लिए, मगर वहां पे जाके नहीं कह सकते, वहां पे जाके नहीं कह सकते किसी को आप अल्लाह मेरा दिल तो बड़ा अच्छा था, मैं बस ये मेरे काम ऐसे हुआ करते थे। अल्लाह अकबर, आनत वुजूह, चेहरे उसके सामने झुके होंगे, आनत जलील, उसके सामने नीचे, उसके सामने दबे हुए। शेरों की बात खास तौर पे इसलिए की गई कि चेहरे पे ही इंसान की जिल्लत भी नजर आती है, तकब्बुर हो तो भी नजर आता है, आजी हो तो भी नजर आती है, खुशी हो तो भी नजर आती है। चेहरा जो होता है ना, अक्कास होता है इंसान की अंदर जो है ना, उसकी अक्कासी चेहरा करता है, तो इंसान के अंदर के हवाल का पता देता है। तो चेहरे चेहरों की हालत उस दिन ऐसे होगी, किसी चेहरे पे तकबर नहीं होगा, राउनत नहीं होगी, कोई एरोगेंट नहीं होगा। बड़ा फिरौन भी, अबू जहल भी देखो यहाँ पे कैसे थे, वहां पे जाके सारे चेहरे जलील होंगे अल्लाह ताला के आगे, इंसान झुके होंगे अल्लाह के आगे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, इसलिए क्योंकि वो रब की जात ही ऐसी है, वो जो हई और कयूम है, हई अल कयूम, हई वो जो जात जिंदा है और हमेशा जिंदा है, और एक है वो मुहयी और मुमीत भी है, हई है ना उसी से, कि वो जिंदगी देने वाला और मौत देने वाला। देखिए बाज अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स का कोई उसका उलट भी है ना, कि वो चाहे इज्जत दे, वो चाहे जलील कर दे, वो उस अव्वल और आखिर और इब्तदा और इंतहा और सब इस तरह उलट भी है, लेकिन हई का कोई उलट नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर मौत नहीं है, जो हमेशा जिंदा रहने वाला और कयूम कायम करने से है, कायम कयाम है ना, कयाम करना होता है, खड़ा करना होता है, यानी हर चीज को कायम करने वाला, मेंटेन करने वाला, सस्टेन करने वाला, हर चीज की एग्जिस्टेंस जो है ना, या जो भी चीज चल रही है इस कायनात में, इस पूरे कारखाना है कुदरत में, वो उसके कायम रखने से कायम है, सिर्फ जिंदगी नहीं देता, कायम भी रखता है, यानी हर चीज मोहताज है उसकी अपने कायम रहने के लिए। अगर एक बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद उसको सस्टेन रखना, उसको कायम रखना, ये भी तो एक काम है ना, ये भी तो एक चीज है, सिर्फ पैदा ही तो नहीं हो जाता, उसके बाद उसकी जो जिंदगी चलनी है उसके अंदर भी वो मोहताज है किसी का, कायनात की हर चीज अपने कायम रहने में मोहताज है अल्लाह ताला की, वो अल-कय्यूम है। और आपको पता है ना, मैंने आपको शुरू में बताया था कि तीन सूरतें ऐसी हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें इस्मे आजम है, और इस्मे आजम क्या है, अल्लाह ताला के नामों में से वो एक नाम, वो इस्म अल्लाह ताला का, जिससे उसको पुकारा जाए तो जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। तो वो इन तीन सूरतों में है, अल-बकरा, आले इमरान और सूरह ताहा में। और लोग कहते हैं कि ये जो हय और कयूम नाम है ना, वो इन्हीं तीन सूरतों में कॉमन है, तो शायद यही सूरत, यही आयत हो, यही नाम हो, लिहाजा इस आयत को भी पढ़ के हम दुआ कर सकते हो, उन आयतों को भी पढ़ के। आपको पता है सूरह बकरा में तो आयतल कुर्सी जो है वो, और सूरह आले इमरान की आयत नंबर 2 अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम, और सूरह तहा में ये, तो इन तीनों आयतों को पढ़ के आप दुआ कर सकते हैं। और वैसे भी अल्लाह ताला को सबसे पसंद है कि उसकी तौहीद बयान की जाए, तो उसकी तौहीद बयान करके भी आप, जैसे असलाफ जो हमारे थे ना बुजुर्ग, पहले गुजरे हुए नेक लोग, जब दुआ करते थे तो कुरान की आयात पढ़ते चले जाते थे, जिनमें अल्लाह ताला की तौहीद, उसका इख्तदार, उसका इख्तियार, उसकी बादशाहत, उसकी बुलंदी, इसकी बातें हो, उसकी अजमत की बात हो, तो वो वाली आयात पढ़ते चले जाते थे और फिर अल्लाह ताला से दुआ करते थे। जैसे अल्लाह ताला को बहुत पसंदीदा दुआ जो अल्लाह के नजदीक है, जो अराफा के दिन की है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लहु वला वला कुल्ली शयइन कदीर, ये आप देखो इसके अंदर कुछ मांगा कुछ भी नहीं किया, अल्लाह ने बिन मांगे ही दे देने, उसकी तौहीद उसको इतनी पसंद है कि जब इंसान बयान करता है और उसमें तौहीद ही है, तो अल्लाह ताला हई और कयूम है, इंसान जब उसको हई और कयूम मानता है ना कि अल्लाह मेरी जात, मेरी हस्ती और ये सारी कायनात तेरे कायम रखने से कायम है, ए अल्लाह तू हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहने वाला है, तेरा ना कोई आगाज और ना कोई इंतहा है, कोई दिन ऐसा नहीं था कि अल्लाह ताला उस दिन पैदा हुआ ना, उसे बिल्ला अल्लाह ताला हमेशा से, चाहे तुम्हारी अकल में आए या ना आए, मैं मानता हूँ अल्लाह तो हई है और अल्लाह तो कयूम है, तो खुद भी कायम है और कायम रहने वाला है, जो चीज भी कायम है वो तेरे कायम रखने से कायम है अल्लाह, वो चीज खुद इतनी ताकत नहीं रखती कि वो कायम रह सके जब तक तू ना उसको कायम रखे, तो लिहाजा ये अल्लाह ताला के एट्रीब्यूट्स यहाँ पर आए हैं, वक़द ख़ाबा मन हमला ज़ुल्मन, और तहकीक ना मुराद हो गया जिस दिन जिसने उठाया जुल्म, उस दिन वो ना मुराद हो गया, ख़ाबा कहते हैं खाली होने का, खाली होना, हर खैर से खाली हो गया, और जुल्म क्या चीज होती है, किसी चीज को उसकी जगह से हटा देना, सबसे बड़ा जुल्म क्या है, शिर्क, और उसके बाद इंसानों के हक में ज्यादती करना, इंसानों के हकूक मार लेना, किसी को उसका हक ना देना, हक में कमी कर देना, इंसानों के साथ कहते हैं ना उसने बड़ा जुल्म किया है, वो जो हम आम वर्ड्स जुल्म के बोलते हैं ना, बड़े जुल्म किए इसने, बड़े जुल्म उठाए हैं उसने, तो ये क्या असल में होता है, उसके पीछे जाकर क्या देखे तो पता चलता है उसका हक मारा हुआ, उसके साथ ज्यादती की भी है, जिसने भी कोई जुल्म किया होगा ना, तो जुल्म उस दिन अंधेरे बन जाएगा, अंधेरे, और जब अंधेरे बन जाएगा तो वो मुझे बताएंगे फिर अंधेरों के अंदर उस दिन इंसान का क्या हाल होगा, वो कयामत का दिन इतना मुश्किल, ऊपर से अंधेरे, हर चीज जो होती है ना, जुल्म का मतलब ही अंधेरा होता है, हर चीज जो यहाँ पे जैसे है ना उसी की पिक्चर आपको वहां पे नजर आएगी, जिसने यहाँ जुल्म किया होगा यहाँ पे अंधेरे अपने लिए इकट्ठे कर लिए, तो वो कयामत के दिन अंधेरे ही बन के सामने आएंगे, तो जो शिर्क करता हुआ चला गया दुनिया से तो वो भी तबाह बर्बाद हो गया, उस दिन तो ये हाल होगा कि यानी अल्लाह ताला हर हकदार को उसका हक दिलाएगा, और अल्लाह ताला का हक क्या है, उसका हक ये है, वो हक रखता है कि हम ये माने कि अल्लाह तू एक है और तेरे साथ कोई शरीक नहीं है किसी चीज में भी नहीं, ना तेरी खुदाई में, ना तेरी बादशाहत में, ना तेरी कुदरत में, ना तेरी इंसाफ में, ना तेरी रहमतों में, ना तेरी तेरी देन में, किसी जितने तेरे एट्रीब्यूट्स है ना, जितने ये सारे अस्माए हुस्ना है, इनमें किसी में भी कोई शरीक नहीं, ना तेरे इल्म में, तू अकेला है, अकेला है, ये है जिसको तौहीद कहा जाता है, और शिर्क यही है कि इनमें से किसी में भी किसी और को शरीक कर लिया जाए, लिहाजा अल्लाह ताला के साथ जिसने जुल्म किया है शिर्क करके, उसको भी उस दिन बदला देना होगा, और जिसने इंसानों के साथ जुल्म कर दिए हैं, तो इंसान तो छोड़े, आप इससे अंदाजा लगाएं कि उस दिन अल्लाह ताला ने ऐसे हक दिलाने हैं ना कि बेसींग बकरी को भी सींग वाली बकरी ने मारा होगा, तो अल्लाह ताला इस बेसींग बकरी को सींग दे देगा, तू भी मार ले इसको, कि तेरा हक किसने मारा, तेरे साथ इसने ज्यादती की, आज तुझे सींग दिए जाते हैं, तू जाके इसको मार, उसी तरह जैसे इसने तुझे मारा था। हदीसे कुदसी, अल्लाह अज्जा वजल फरमाएगा, मुझे मेरी इज्जत और मेरे जलाल की कसम, किसी जालिम के जुल्म को मैं अपने सामने से नहीं गुजरने दूंगा, यानी ऐसे ही कोई गुजर जाए, जुल्म किए में और जब जाता जाए, आप सोचिए, हम तो इतने न डर रहे हैं यहाँ पे, हमने तो बड़ी बड़ी चीजें ज्यादतियां करके, फिर उसके बाद डकार भी नहीं मारते, लोगों के माल खा लेते हैं, लोगों के साथ ज्यादतियां कर लेते हैं, उनके हकूक मार लेते हैं, हमें पता ही नहीं, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता हमें। और आज आप देखें, जो बेचारा कमजोर है उसका कोई वाली वारिस नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं, तगड़े बंदे को तो फिर भी लोग उसका हक दे देते हैं, ना चाहते हुए या चाहते हुए, जैसे भी दे देते कि चलो अब क्या करें, फिर उसे डर लगता है ना, वो कुछ कर लेगा। लेकिन जो कमजोर है, वो बेचारा माड़ा बंदा है, खुद वो अपना ले नहीं सकता, उसके पास कोई ताकत नहीं, ना उसके पास कोई सिफारिशें हैं, ना उसके पास कोई कॉन्टेक्ट है, कहाँ से लेगा। तो हम भी सोचते हैं इसको तो दबाओ अच्छी तरह, ये करेगा क्या, इसकी मिजाल क्या, ये सार उठाएगा, इसका कौन पूछने वाला है। वो सारी जिंदगी रोता धोता रहता है, कोई परवाह ही नहीं करता, रोते रोते ही दुनिया से चले जाते हैं, हकूक मारते हैं लोग। सिर्फ ये नहीं कि कोई जाके यतीम का ही हक मार रहा है, घरों के अंदर बच्चे वालदैन के हक नहीं दे रहे, अगर वालदैन बच्चों के नहीं दे रहे, बहन भाई आपस में एक दूसरे के हक नहीं दे रहे, मियां बीवी एक दूसरे के हकूक मार रहे हैं। देखें ये सिर्फ ये नहीं कि कोई माशरे का पिसा हुआ तबका है, जिसको जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज तो ये दौर आ गया ना, कुर्बे कयामत है ना, कि जिसके पास जोर है ना, वो कहता मैं दूसरे को दबा ही दूं, इसको पीस ही दूं, मेरा यहाँ पे जोर चल रहा है ना, यहाँ पे नहीं मैंने छोड़ना। जिसको जिधर मौका मिल रहा है, वो चाहे दफ्तर हो, चाहे घर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे सियासतें हो, हुकूमतें हो, जिधर आप देख ले, ऐसा नफसा नफसी का आलम है, उसी के अंदर भी खौफे खुदा नहीं है, किसी के अंदर भी नहीं। हर कोई कहता मैं इधर से छीन लू, उधर से झपट लू, उधर से कर लू, ये कमजोर है इसको दबाऊ, इसको पीसू, इसको कैसे करूं। कोई ये नहीं सोचता कि इसका मुझे जवाब देना होगा, ये भी तो जुल्म है। जहां पे मिसकाल जर्रतिन, एक जर्रे के बराबर भी शर होगा, वो आगे ले आया जाएगा। मुझे बताइए बड़े बड़े जुल्म कहां जाएंगे, कई जायदादों के अंदर फ्रॉड किए हुए, कई विरासतों के अंदर नहीं दिया हुए हकूक, कहीं वैसे ही औरत अपने शौहर को हक नहीं दे रही, जो कहीं शौहर है वो बीवी को छोड़ा हुआ, वो कहता मेरी क्या कर लगी है, मेरा वो नहीं उसका हक देता। कहीं बच्चे वालदैन को ऐसा सता रहे हैं कि उनको आंसुओं से रुला रहे हैं, जुल्म है ये सब, सब जुल्म है। जुल्म की देखे ना अब उसका उलट क्या होता है, अदल। अदल में क्या होता है, हकदार को उसका हक देना। कौन है आज जो ये सोच के एक दूसरे को हक देता है कि भाई अगर मैं नहीं दूंगी ना, अल्लाह मेरे से पूछ करेगा, कौन है जो ऐसा है, किसी को नहीं परवाह है। इसलिए कि हर कोई सोचता है मेरे पास पावर है ना, मेरा आज चल रही है तो चलाओ, आज मैं अपर हैंड रखती हूं ना, तो आज मैं अपनी मर्जी करूंगी। उसको याद ही नहीं रहता कि कोई अल्लाह ताला का भी हुक्म है, मुझे इसकी पूछ होनी है, मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, मैं आज किसी के साथ ज्यादती कर रही हूँ, कल क्या अल्लाह को मुंह दिखाऊंगी, नहीं बस मेरे पास बाबर है ना, और दूसरा कुछ कर नहीं सकता। कहाँ जाएगी ये बेचारी, इसके पीछे को पूछने वाला नहीं, बाप इसका फौत हो गया, बहन भाई इसके पास साथ नहीं खड़े हुए, जो मर्जी करूं कहाँ कहाँ हम जवाब देंगे, जुल्म हर तरफ हो रहा है। अच्छा कई जगह मजलूम वो भी जालिम बन जाते हैं, एक जगह वो पिस रहे हैं, दूसरी जगह वो अपना जगह जुल्म कर रहे हैं। एक जगह जहां पे हम अपने ऊपर तो जुल्म को बहुत याद रखते हैं, लेकिन हम जो जुल्म कर रहे होते हैं वो नहीं हमें याद होता। तो ये अंधेरे हैं, जो यहाँ पे अंधेरों में जिंदगी गुजारता है वहां पे भी अंधेरों में ही रहेगा, ये अंधेरे आज नजर नहीं आते। अगर किसी से जुल्म आज मैं सह रही हूं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी किसी और के ऊपर जुल्म कर रही हूँ, जिधर मेरा चल रहा है मैं वहां जुल्म कर रही हूँ, जिधर मेरी नहीं चल रही उधर मैं सहने वाली बन गई, जिधर मेरी चल रही उधर मैंने जुल्म शुरू कर दी। लड़ाई घर में शौहर के साथ हुई और मार मार के बच्चों का बुरा हाल कर दिया, किसने आपको ये राइट दिया। एक बच्चे के हक था कि वो दुनिया के अंदर आए, उसको पेट में ही मार दिया कि मुझे जरूरत ही नहीं है इसकी। देखे ना ये सारे जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। देखें जहां जहां पे हम जुल्म कर रहे हैं उनको देखें, मेरे से जुल्म ना हो जाए, मेरे से ज्यादती ना हो जाए। अगर आज मेरी चल रही है ना तो कल भी ऐसे चलती नहीं रहनी, वो रब देख रहा है। अगर मैं सास हूं, अगर मैं बहू हूं, अगर मैं नंद हूं, अगर मैं भाभी हूं, मैं किधर किधर क्या क्या करने लगी, मेरे तो कई रोल्स हैं ना, कई शेड्स हैं, कहीं तो मेरी भी चलती है, कहीं मैं दबती हूं, जहां मेरी चलती है वहां मैं क्या हूं। अरे किसी को जवाब नहीं देना, किसी के आगे सच्चा नहीं होना। लोग मुझे कहें बहुत अच्छी है ये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात तो ये है कि अल्लाह के आगे खड़े होना, जो अंदर और बाहर सबको जानता है, घरों के अंदर की बातों को भी जानता है, घरों के बाहर की बात भी जानता है। सल्ला हमारा बातिन हमारे जाहिर से ज्यादा अच्छा कर देना। आज हम जाहिर को संवार देंगे, लोगों के सामने अच्छे नजर आ जाए। वो ही बात है ना, वो बड़ी प्यारी बात है। एक बादशाह जा रहा था अपने सारे अपने बुजारा उनके साथ जा रहा था घोड़े पे, किसी जगह से गुजरा तो एक पुल पे एक बुढ़िया खड़ी हुई थी। उसने कहा है बादशाह ये बता कि इस पुल पे फैसला करना है मेरे साथ कि पुल सिरात पे करेगा। बादशाह कांप गया, उसने अपने सारे जो पूरा अपने साथ साथ सारा लश्कर था उसको खड़ा कर दिया, घोड़े से नीचे उतरा और कहने लगा हाँ इस पुल पे ही फैसला कर ले, वहां पे तो नहीं मैं फैसला दे सकूंगा, वहां पे नहीं मैं तेरा हक दे सकूंगा, तो यहाँ पे जो तूने लेना वो ले। हाँ कई जिनको खुदा खौफी होती है ना, उनको यही होता है कि यहीं पे फैसले कर लो, यहीं पे हकूक दे दो, वहां पे नहीं हम दे सकेंगे, वहां पे तो अपनी नेकियां ही देनी पड़ेंगी, फिर इसके बगैर कोई वहां से गुजर नहीं सकेगा। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहीं पे माफ करा लो, कर चुके हो तो माफ करा लो, किसी तरह कॉम्पेंसेट करा लो। मैंने आपको हजरत उमर बिन आस का वाकया बताया था ना, किस तरह से हजरत उमर के दरबार में जिस वक्त शिकायत लेने वाला शिकायत लेकर आया, उसने कहा मुझे 100 कोड़े इन्होंने मार दिए हैं और नाजायज मारे हैं। नहीं सर के हाकिम थे उस वक्त, हजरत उमर ने फरमाया तुम बदला ले लो। तो हजरत उमर बिन आस ने कहा कि इस तरह से होने लगा तो फिर हमारा हाल क्या होगा। उन्होंने उसको मना लिया किसी तरह, ये हर कूड़े के बदले ना तुम्हें 2 अशरफिया दूंगा, तो 200 अशरफिया देके उसको मना लिया। तो यहाँ पे मना ले, चाहे पैसे देके मनाने पड़े, यहाँ पे दे सकते हैं पैसे आप। अगर पैसे देके कोई मान जाता है कि उसको पैसे ही इसका वो है, उससे मान जाता है वो दे दे, गिफ्ट से मान जाता है वो दे दे, किसी तरह भी करके यहीं पे मना ले, यहीं पे खलासी करा ले, यहीं पे अदले बदले हो सकते हैं, वहां पे नहीं हो सकेंगे। فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوة سنية.
يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما